नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेसन कैनन की यह पुस्तक लैम्पस्टैक आधारित वेब अनुप्रयोगों के लिए उच्च उपलब्धता की व्यावहारिक चरणबद्ध मार्गदर्शिका है। लैम्प का अर्थ लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP है, एक ऐसा संयोजन जो कस्टम वेबसाइटों तथा वर्डप्रेस, ड्रुपल और जूमला जैसे अनेक अनुप्रयोगों में लंबे समय से प्रयुक्त होता रहा है। पुस्तक का केंद्रीय उद्देश्य किसी एक सर्वर, नेटवर्क घटक, स्टोरेज व्यवस्था या डेटाबेस पर निर्भरता घटाकर सेवा बाधित होने की संभावना कम करना है। कैनन केवल सर्वर जोड़ने को उच्च उपलब्धता नहीं मानते, बल्कि ऐसी संरचना पर ध्यान देते हैं जिसमें विफलता होने पर भी उपयोगकर्ता तक सेवा पहुंचती रहे और मरम्मत नियंत्रित ढंग से की जा सके। इसमें रिडंडेंसी, स्केलेबिलिटी, प्रदर्शन और प्रबंधनीयता को एक साथ देखने का ढांचा दिया गया है। यह मुख्यतः लिनक्स प्रशासकों, वेब होस्टिंग कर्मियों और छोटे से मध्यम स्तर के अनुप्रयोग संचालकों के लिए लिखी तकनीकी पुस्तक है। कुछ कमांड लाइन अनुभव उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता सिद्धांत से अधिक वास्तविक परिनियोजन और विन्यास समझाने में है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एकल विफलता बिंदु की पहचान से शुरू होने वाली संरचना। पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि उच्च उपलब्धता किसी एक उत्पाद का नाम नहीं, बल्कि निर्भरता मानचित्रण की प्रक्रिया है। यदि एक ही वेब सर्वर, एक ही डेटाबेस मशीन, एक ही स्टोरेज स्रोत या एक ही प्रवेश IP उपलब्ध है, तो उसके असफल होते ही पूरी सेवा रुक सकती है। कैनन की दृष्टि में डिजाइन का आरंभ इस प्रश्न से होना चाहिए कि किसी घटक के हट जाने पर कौन सी उपयोगकर्ता क्षमता समाप्त होगी। इस तरह समस्या केवल हार्डवेयर खराब होने तक सीमित नहीं रहती। गलत विन्यास, नेटवर्क अनुपलब्धता, डिस्क भरना, सेवा प्रक्रिया रुकना और रखरखाव के दौरान होने वाला अवरोध भी विफलता के रूप है। पुस्तक रिडंडेंसी को इसी कारण आवश्यक बताती है, लेकिन उसका अर्थ हर वस्तु की अंधाधुंध प्रतिकृति बनाना नहीं है। प्रतिकृति तभी सार्थक है जब ट्रैफिक दूसरे संसाधन तक जा सके, डेटा सुसंगत रहे और विफल हिस्से की स्थिति स्पष्ट हो। यह दृष्टिकोण आपातकाल में जल्दबाजी से निर्णय लेने के बजाय पहले से विकल्प तैयार करने पर जोर देता है। परिणामस्वरूप संचालन दल खराब नोड को ठीक करने के दबाव में सेवा बंद नहीं करता, बल्कि सक्रिय संरचना से उपयोगकर्ताओं को सेवा देता रहता है। पुस्तक का वास्तविक सबक यही है कि उपलब्धता की शुरुआत सर्वरों की संख्या से नहीं, छिपी हुई निर्भरताओं को पहचानने से होती है। दूसरा, लोड बैलेंसिंग और फ्लोटिंग IP से वेब परत की निरंतरता। वेब परत में उच्च उपलब्धता का व्यावहारिक आधार अनुरोधों को एक मशीन से अलग करके कई वेब सर्वरों में बांटना है। पुस्तक लोड बैलेंसिंग को केवल अधिक ट्रैफिक संभालने की तकनीक नहीं मानती। इसका दूसरा कार्य यह है कि किसी वेब नोड के असफल होने पर स्वस्थ नोड उपयोगकर्ता अनुरोध लेना जारी रख सकें। इसलिए लोड वितरण और स्वास्थ्य की जांच एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। यदि असफल सर्वर को ट्रैफिक मिलता रहे, तो अतिरिक्त सर्वर होने पर भी उपयोगकर्ता को त्रुटि दिखाई देगी। इसी संदर्भ में फ्लोटिंग IP उपयोगी बनता है, क्योंकि सेवा का सार्वजनिक प्रवेश पता किसी एक स्थायी मशीन में बंधा नहीं रहता। सक्रिय घटक बदलने पर भी बाहरी उपयोगकर्ता उसी पते से जुड़ते हैं। यह व्यवस्था रखरखाव के समय भी मदद करती है, जब एक नोड को क्रमशः हटाकर अद्यतन किया जा सकता है। फिर भी पुस्तक का व्यापक संकेत यह है कि वेब नोडों को यथासंभव समान और बदले जा सकने योग्य रखना चाहिए। यदि प्रत्येक मशीन में अलग फाइलें, अलग सत्र स्थिति या अलग विन्यास जमा हो, तो लोड बैलेंसिंग अधूरी रह जाएगी। इसलिए वेब परत की निरंतरता नेटवर्क प्रवेश, अनुरोध वितरण और अनुप्रयोग स्थिति के समन्वय पर निर्भर करती है। पाठक को क्षमता बढ़ाने और विफलता सहने, दोनों उद्देश्यों के लिए इस परत को डिजाइन करना सिखाया जाता है। तीसरा, उच्च उपलब्ध डेटाबेस में प्रतिकृति और डेटा सुसंगतता की चुनौती। लैम्प अनुप्रयोगों में MySQL अक्सर सबसे संवेदनशील घटक होता है, क्योंकि वेबसाइट के कई वेब सर्वर हो सकते हैं, पर उपयोगकर्ता डेटा, सामग्री और लेन देन डेटाबेस में केंद्रित रहते हैं। पुस्तक उच्च उपलब्ध डेटाबेस क्लस्टर की आवश्यकता को इसी जोखिम से जोड़ती है। डेटाबेस की प्रतिकृति केवल बैकअप से अलग है। बैकअप डेटा लौटाने में सहायक होता है, लेकिन सेवा जारी रखने के लिए एक ऐसा उपलब्ध विकल्प चाहिए जो विफलता के बाद अनुरोध स्वीकार कर सके। साथ ही प्रतिकृतियों के बीच डेटा की स्थिति महत्वपूर्ण है। यदि अलग नोडों पर अलग डेटा दिखे, तो सेवा तकनीकी रूप से चालू दिखने पर भी उपयोगकर्ता के लिए अविश्वसनीय हो सकती है। कैनन का ढांचा पाठक को डेटाबेस को वेब परत की तरह साधारण रूप से क्षैतिज बढ़ाने की भूल से बचाता है। यहां लिखने के अनुरोध, प्रतिकृति, फेलओवर और अनुप्रयोग कनेक्शन की दिशा पर विचार करना पड़ता है। किसी डेटाबेस नोड की अनुपलब्धता पहचानने के बाद अनुप्रयोग को सही सक्रिय संसाधन तक पहुंचना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि फेलोवर की प्रक्रिया संचालन दल के लिए समझने और जांचने योग्य हो। पुस्तक इस स्तर पर प्रबंधनीयता को विशेष महत्व देती है। अत्यधिक जटिल क्लस्टर, जिसे दल संकट में संचालित ना कर सके, अपेक्षित उपलब्धता देने के बजाय जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए डेटाबेस उपलब्धता का लक्ष्य केवल प्रतियां बनाना नहीं, बल्कि सुसंगत डेटा और पूर्वानुमेय पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है। चौथा, साझा स्टोरेज और बिना अवरोध क्षमता विस्तार का संचालन पक्ष। पुस्तक स्टोरेज को उच्च उपलब्धता के एक अलग पर अक्सर उपेक्षित भाग के रूप में रखती है। कई वेब सर्वरों वाले अनुप्रयोग में अपलोड की गई फाइलें, मीडिया, साझा संसाधन या अनुप्रयोग डेटा किसी एक स्थानीय डिस्क पर होने से नई विफलता निर्भरता बन सकती है। उपयोगकर्ता को अलग वेब नोड पर अलग परिणाम मिलना भी इसी प्रकार की समस्या है। इसलिए साझा स्टोरेज और सर्वरों में बिना सेवा रोके स्टोरेज जोड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण विषय है। यह विचार उस सामान्य धारणा को चुनौती देता है कि लोड बैलेंसर और कई वेब सर्वर लगा देने से संरचना पूरी तरह उच्च उपलब्ध हो गई। यदि डेटा तक पहुंच एक ही मशीन, माउंट या नेटवर्क मार्ग पर निर्भर है, तो वही नया एकल विफलता बिंदु बन सकता है। पुस्तक के संदर्भ में सही डिजाइन को यह देखना होता है कि नेटवर्क उपलब्ध होने के बाद फाइल सिस्टम कब माउंट हो, सेवा आरंभ होने की निर्भरताएं क्या हों, और अस्थायी समस्या में अनुप्रयोग कैसे व्यवहार करे। ये संचालन संबंधी बारीकियां वास्तुकला की गुणवत्ता तय करती है। स्टोरेज विस्तार का लाभ केवल अधिक स्थान नहीं है, नियोजित विस्तार को उपयोगकर्ता बाधित किए बिना करने से रखरखाव जोखिम घटता है। फिर भी साझा स्टोरेज को स्वतः सुरक्षित नहीं समझना चाहिए, उसकी अपनी उपलब्धता, प्रदर्शन और पुनर्प्राप्ति व्यवस्था भी जांची जानी चाहिए। इस प्रकार पुस्तक डेटा की पहुंच को वेब क्षमता के बराबर प्राथमिकता देती है। अंत में स्केलेबिलिटी, प्रदर्शन और प्रबंधनीयता के बीच व्यावहारिक संतुलन। कैनन पुस्तक में चार परस्पर जुड़े मानदंडों पर जोर देते हैं, रिडंडेंसी, स्केलेबिलिटी, प्रदर्शन और प्रबंधनीयता। रिडंडेंसी विफलता सहने में मदद करती है, जबकि स्केलेबिलिटी बदलती उपयोगकर्ता संख्या के अनुसार संसाधन बढ़ाने या घटाने की क्षमता है। लेकिन केवल नए सर्वर जोड़ पाना पर्याप्त नहीं। यदि डेटाबेस स्टोरेज या लोड वितरण क्षमता के साथ नहीं बढ़ते, तो प्रणाली का अवरोध किसी दूसरी परत में पहुंच जाता है। प्रदर्शन का प्रश्न इसलिए उपयोगकर्ता अनुभव से जुड़ता है। सेवा उपलब्ध हो पर बहुत धीमी हो, तो वह व्यावहारिक रूप से अपेक्षा पूरी नहीं करती। चौथा मानदंड, प्रबंधनीयता, इस पुस्तक को केवल तकनीकी घटकों की सूची से अलग बनाता है। जटिलता बढ़ने पर निगरानी, विन्यास की एकरूपता, विफलता परीक्षण और मरम्मत की स्पष्ट प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है। ऐसी संरचना जो विशेषज्ञ के बिना समझी ना जा सके, रात के समय वास्तविक घटना में कमजोर सिद्ध हो सकती है। पुस्तक का दृष्टिकोण क्लाउड प्रदाताओं, कस्टम अनुप्रयोगों और लोकप्रिय मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के लिए अनुकूलनीय है, क्योंकि इसके सिद्धांत किसी एक लिनक्स वितरण तक सीमित नहीं है। कमांड अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्भरता, फेलोवर और संचालन के मूल प्रश्न समान रहते हैं। इस संतुलन का अर्थ सबसे महंगी या सबसे जटिल व्यवस्था चुनना नहीं, बल्कि अपेक्षित उपलब्धता के लिए समर्थनीय डिजाइन चुनना है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो लैंप आधारित वेबसाइट या अनुप्रयोग को एकल सर्वर से आगे ले जाना चाहते हैं, पर तकनीकों के विशाल विकल्पों में भटकने के बजाय एक संगठित परिनियोजन दृष्टि चाहते हैं। लिनक्स सिस्टम प्रशासक, वेब ऑपरेशंस कर्मी, छोटे उत्पाद दल और वर्डप्रेस या अन्य पीएचपी अनुप्रयोग संचालित करने वाले तकनीकी लोग इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। आरंभिक पाठक को कमांड लाइन का बुनियादी अनुभव होना चाहिए, जबकि अनुभवी पाठक इसे अपनी उपलब्धता जांच सूची और डिजाइन सोच को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग कर सकता है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक वेब सर्वर, लोड बैलेंसिंग, फ्लोटिंग आईपी, साझा स्टोरेज और डेटाबेस क्लस्टर को अलग अलग विषयों की तरह नहीं, एक सेवा की परस्पर निर्भर परतों की तरह देखना सीखता है। पुस्तक की सीमा भी समझनी चाहिए। यह आधुनिक कंटेनर, सर्वरलेस या नवीनतम प्रबंधित क्लाउड सेवाओं का सर्वव्यापी मार्गदर्शक नहीं है, और समय के साथ कुछ कमांड या सॉफ्टवेयर संचालन बदल सकते हैं। फिर भी इसका मूल मूल्य बना रहता है, क्योंकि विफलता की पूर्व योजना, एकल निर्भरता हटाना, नियंत्रित फेलओवर और प्रबंधनीय संचालन स्थायी इंजीनियरिंग सिद्धांत है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशेषता अत्यधिक सैद्धांतिक चर्चा के बजाय एक संपूर्ण लैंप संरचना को चरणों में समझाने पर केंद्रित होना है। यह उपलब्धता को केवल अपटाइम का दावा नहीं, बल्कि परीक्षण योग्य डिजाइन और दैनिक संचालन की जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, जेसन कैनन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।